श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 9। कविम पुराणम मनुषासितारम अणोर अणीयाम स्मनुरस्मरिद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्ताद। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि भगवान का स्मरण मात्र एक वस्तु की तरह नहीं करना, जैसे हम स्पीकर का स्मरण करते हैं या लैपटॉप का स्मरण करते हैं, बल्कि अपितु परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका स्मरण करना है। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। आजकल के समाज में जब बोलते भी हैं कि हम परमेश्वर पर ध्यान कर रहे हैं और उनसे पूछे कि उनका रूप क्या है तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो यानी कि वो प्राय निराकार का ध्यान करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः तो घर परिवार की ही बातें ध्यान में आती होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं रहता उनका। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि जो हम सुनते हैं और देखते हैं उन्हीं चीजों का स्मरण हमारे चित्त में होता है। तो निराकार को तो ना तो हम देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, तो कैसे इसका स्मरण कर सकते हैं? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहां वर्णित है। तथ्य रूप में वर्णित है मतलब कि यही विधि है ध्यान करने की। ये निराकार का ध्यान कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं, हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तु के उद्गम हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है, तो वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि भगवान के गुणों का भी स्मरण किया जा रहा है। केवल भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्मरण करने का अर्थ है कि भगवान को उनके गुणों के साथ स्मरण किया जाए। और यहां भगवान के एक विशिष्ट गुण के बारे में हम सीख रहे हैं और वो है सर्वज्ञता। जितनी भी असंख्य जीवात्माएं हैं, वो क्या की थी, अभी क्या कर रही हैं, आगे क्या करेंगी, क्या सोचेंगी, कहां खाएंगी, क्या करेंगी, सब कुछ भगवान जानते हैं। और इसके अलावा भी प्रकृति की सृष्टि कैसे हुई थी, क्या होगा, प्रकृति कैसे चलेगी, सब कुछ वो बात जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों पर विचार करना चाहिए। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भगवान आदि पुरुष हैं और बाकी सारी वस्तुएं उनके बाद में ही आई हैं। इस कारण से हम लोग भगवान के बारे में सुनकर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वस्तुएं हमारे जन्म के पहले आई हैं उनके बारे में हम प्रत्यक्ष नहीं समझ सकते हैं, सुन के ही समझते हैं। इसीलिए भगवान के बारे में जानने का बिल्कुल सही तरीका यही है कि हम भगवान से भगवद गीता के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के द्वारा सुने। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो भी ब्रह्मांड में कार्य हो रहा है वो भगवान के कंट्रोल से बाहर चला गया है। जैसा कि कुछ लोग नाराबाजी करते हैं कि भगवान है या भगवान था लेकिन अब मर गया है, अब कोई कंट्रोल नहीं है, इतनी बुरी चीजें क्यों हो रही हैं, बुरे लोग क्यों पनप रहे हैं, तो ये सब बातें गलत हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाव के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। एक अद्भुत बात है भगवान की कि भगवान छोटे से भी छोटे हैं, यानी आत्मा से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं। तो ये भगवान की दोनों, भगवान के अंदर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। अगर भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे भी हैं, इसको हमें शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए यहां शब्द आ रहा है अचिंत्य। अचिंत्य का अर्थ ही यही है कि हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि परमाणु के रूप में खाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह नहीं है, अपितु उस सूक्ष्म नियोजन को भी वो नियोजित कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी वस्तुएं हमारे रूम में हो सकती हैं, लेकिन वो वस्तुएं किसी को कंट्रोल नहीं करती हैं, लेकिन भगवान परम नियंता के रूप में हैं और एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर भी प्रवेश किए हुए हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। अभी भी कितनी अचिंत बात है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि आत्मा कितनी छोटी है और वो कितने बड़े बड़े शरीर को क्रियान्वित कर रही है, कितने बड़े बड़े कार्य कर रही है। तो भगवान में ऐसा अगर गुण हो तो कौन से आश्चर्य की बात है। ये सोचना कि भगवान के अंदर ये गुण कैसे है, ये प्रश्न करने के बजाय ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान के अंदर ये गुण है और वो हमारी शरण है। क्योंकि कैसे है ये समझना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, असंभव ही है। अचिंत इसीलिए शब्द यहां पे आया है। उनके द्वारा उन लोगों को धारण होता है, इन लोगों का धारण होता है, मतलब जितने भी ग्रह हैं वो अपनी कक्षा में भगवान की शक्ति से ही है। जैसा कि भगवान आगे बताएंगे, गामा विषय च भूतानी धारयाम अहम ओजसा, जितने भी ग्रह हैं वो मैं अपनी शक्ति से धारण कर रहा हूं, जैसे कोई अपने मुट्ठी में बालों के कणों को धारण करे। अब पॉइंट ये है कि किसी की मुट्ठी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन भगवान की शक्ति हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए कहा जाता है कि भगवान है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान अपनी शक्ति से धारण कर रहे हैं। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहां यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत कहलाती है। और अगर हम ये बात स्वीकार कर पाते हैं तो भगवान की कृपा के द्वारा एक दिन भगवान की महिमा कुछ हद तक समझ पाएंगे। कम से कम इस भावना से हमारा चैलेंजिंग एटीट्यूड खत्म हो जाता है कि हम कैसे समझें। जैसे मैं फिर उदाहरण दूंगा, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है भगवान के, तो हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान का नाम करते करते एक दिन भगवान की कृपा से इस बात का अनुभव होगा, लेकिन वो कृपा से होगा, ना कि हमारी भौतिक बुद्धि से। बुद्धि के द्वारा हमें खाली यही निर्णय लेना है कि भगवान के अचिंत गुणों को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, उनकी कृपा से समझ सकते हैं। और ये भी अचिंत है कि कैसे हम भगवान की कृपा से भगवान कैसे अपने आप को प्रकट कर देते हैं हृदय में, ये भी चिंत है। लेकिन जिसके हृदय में प्रकट करेंगे वो समझ पाएगा। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है। वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं, अर्थात इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान पूरी तरह से सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर भगवान यहाँ पर हर जगह व्याप्त हैं तो वो भी एक भौतिक तत्व बन गए या उनकी उनकी जो व्यक्तित्व है वो नष्ट हो गया है, ना। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है। अचिंत का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अथा बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कोई बीमार होता है और बहुत बार उसको होम्योपैथिक दवा वो लेता है, स्वीकार करता है, तो क्या करे, तो मीठी गोलियां हैं, ये तो पानी जैसी लग रही है दवा, ये कैसे काम करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से होम्योपैथिक दवा काम करती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस पे समय व्यर्थ नहीं करते कि दवा काम कैसे करती है, अपितु उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं, सीखने में एनर्जी लगाते हैं कि वो दवा खानी कैसे है, उसका लाभ कैसे उठाया जाए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, भगवान की सेवा है, ये कैसे कार्य करती है ये समझना मुश्किल होता है, लेकिन इसके अनुभव को, इसके प्रभाव को हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सुख आता है, शांति आती है, हमारा हृदय साफ होता है, भगवान के चरणों में भाव श्रद्धा बढ़ जाती है और भगवान को भी हम अधिक अधिक समझ पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बस भक्ति का जो, क्योंकि भक्ति भी अचिंत ही है, किस प्रकार से हमारे हृदय में जागृत होती है, तो उसको भक्ति करने से व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा और फिर भगवान को समझ पाएगा। और अगर वो सोचता रहे कि मैं इस तर्क के अनुसार करूं, वो खंडन करूं, मैं करता हूं, तो करते रह सकता है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा अपने जीवन में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा।